ஓம் சாந்தி. तो आज का विषय है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दो प्रकार के खजाने हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म. स्थूल खजाने चार प्रकार के हैं. एक है समय, सबसे बड़ा खजाना है. समय के बाद वाणी, बोल, ये भी एक बहुत बड़ी खजाना है, इसका भी बहुत बड़ा वैल्यू है. उसके बाद एक है कि हर एक व्यक्ति कर्म करता है, तो कर्म के खजाने, श्रेष्ठ कर्म, पाप कर्म, तो कर्म का भी एक खजाना है. उसके बाद है धन का खजाना. ऐसे ही सूक्ष्म में भी है, सूक्ष्म में भी खजाने हैं. एक है संकल्प शक्ति, दूसरा है योग की शक्ति. योग की शक्ति को एक खजाना है, जमा करना है. फिर ज्ञान का खजाना है और गुणों का खजाना है. तो समय परिस्थिति के अनुसार, ये कलयुग का अंतिम समय है, संगम युग कहते हैं इसको. संगम युग पर समय का वैल्यू इतना अनंत है. तो ज्ञान के सागर शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ये शिक्षा दी है बच्चे, संगम का एक सेकंड पदम के समान है, पदम गुणा समान है. एक सेकंड काम अगर कोई भी करो, पदम गुणा उसकी प्राप्ति है. इतना संगम का वैल्यू है. क्यों ऐसा नहीं है? अगर आप समझते हो मैं एक कलयुग के अंत में संगम युग पर हूं, ना कलयुग है ना सत्युग है, उसके बीच में ये परिवर्तन होने का समय है. तो परिवर्तन अपने आप नहीं होता है. सर्वशक्तिवान शिव बाबा इस धरती पर आकर ज्ञान के आधार से, चमत्कार के आधार से नहीं, ज्ञान के आधार से, पढ़ाई के आधार से इस कलयुग को स्वर्ग के रूप में परिवर्तन कर रहा है. तो ये परिवर्तन का इतना समय वैल्यूएबल है. अगर ये हमारे बुद्धि में रह जाए, एक समझ में आ जाए कि समय का वैल्यू क्या है. अगर किसी को आज लॉटरी लग गई, 10 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई, और कल एक महीने के बाद, एक साल के बाद शरीर छूट गया, तो वो 1 करोड़ उसके साथ जाएंगे? 10 करोड़ कमाया, जाएगा उसके पास? यहां ही छोड़ के जाना है. अगर वही इस संगम पर, संगम का वैल्यू समझकर, अगर 5 मिनट भी सर्वशक्तिवान भगवान को, बाबा ने तो 1 मिनट कहा, 1 मिनट भी सर्वशक्तिवान शिव बाबा से अगर बुद्धि योग लगाया, अनेक जन्मों के पाप को, विकर्म को विनाश कर सकते हैं. इतना समय का वैल्यू है. यह समझ में आना चाहिए सिर्फ, क्योंकि समझने के बिगैर कुछ भी नहीं हो सकता है. इसलिए दुनिया में कहते हैं जब तक महसूस नहीं किया है तब तक परिवर्तन नहीं होता है. अनलेस यू रियलाइज देर इज नो चेंज. जब देख लो आप, जब बीमार समझते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो. डॉक्टर साथ में है तो भी डॉक्टर की जरूरत नहीं है. डॉक्टर कब चाहिए? जब हमें समझ में आया मैं बीमार हूं. भगवान कब चाहिए? भगवान क्या देता है, भगवान कौन, ये समझ में आता है इस संगम पर ही. तब तक भगवान भगवान करते ढूंढते रहे. हमने अभी अभी देखा एक बहुत बड़ा हिमालयन सन्यासी है, उसने, वो सदा आंखें बंद करके ध्यान में बैठते थे. तो उनके चेले ने उनको पूछा, गुरुजी मुझे कब दर्शन देंगे आप? मैं जब भी आता हूं आप आंखें बंद करके बैठते हो, तो मुझे भगवान का दर्शन, भगवान कब मिलेगा? एक दिन उन्होंने पूछा, तो आपको कौन सा भगवान चाहिए? तब तक उनको था भगवान चाहिए इतना ही पता था, भगवान कौन है वो पता ही नहीं था. तो आप समाधि में बैठो, ध्यान लगाओ और मुझे बताओ आकर के आपको कौन सा भगवान चाहिए. तब तक कभी सोचा नहीं था, भगवान चाहे इतना ही पता है। फिर उसने आके दोबारा कहा, तब गुरुजी ने कहा एक, उसको कहा बींग। अगर मनुष्य रूप का भगवान चाहिए तो उसकी आप कल्पना करो, उसको और एक शब्दों में कहा कल्पना करके विजुअलाइज करो, क्योंकि वो मनुष्य रूप है, स्थूल है, स्थूल रूप की कल्पना किया जाता है, विजुअलाइज किया जाता है। लेकिन भगवान नहीं मिलेगा, भगवान को शरीर नहीं है, वो निराकार है। फिर कहा अगर आपको भगवान चाहिए तो पहले अपने आप को समझो, सेल्फ रियलाइज करो, स्वयं को समझो। तो स्वयं को समझने के बाद गॉड रियलाइजेशन होगा। विजुअलाइजेशन अलग, रियलाइजेशन है। तो भगवान निराकार है, निराकार को रियलाइज किया जाता है, बीइंग समझते हो। इसलिए भारत के अंदर सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति है, दो चीज है, सगुण भक्ति भी है और निर्गुण भक्ति भी है। तो यहां भी अगर आप समय को समझते हो, हमने आधा कल्प सगुण भक्ति किया, मंदिर में गए, पूजा किया, व्रत किया, जप किया, बहुत कुछ किया, और किसी किसी को कोई ना कोई वस्तु संपत्ति कुछ ना कुछ प्राप्त भी हुआ है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन विकर्म किसी के विनाश नहीं हुए हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा इस समय आके एक ही कहता है, बच्चे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ देता नहीं हूं, ना मेरे पास कुछ है, सिर्फ मेरा एक ही धर्म और कर्म है। क्या है वो? मैं पतित आत्मा को पावन बनाने आया हूं, न धन देने आया हूं, न किसी की नौकरी लगाने आया हूं, न किसी का बिजनेस करने आया हूं, कुछ भी मैं कर नहीं सकता हूं, सिर्फ एक ही काम करता हूं, पतित आत्मा को पावन करता हूं। अगर आत्मा पावन हो, क्योंकि सृष्टि के अंदर एक ऐसा नियम है, इट इज ए यूनिवर्सल लॉ। क्या है वो सृष्टि के अंदर नियम? इस सृष्टि की जो संपत्ति है, आज भी भारत गरीब नहीं है, भारत में रहने वाले गरीब है। आज भी भारत में हीरे जवाहरात सोना इतना अनंत है, भारत आज भी गरीब नहीं है। तब का इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है कि अपवित्र व्यक्ति इस सृष्टि की जो संपत्ति है उसका उपभोग नहीं कर सकता है। आज भी देख लो, आप किसी के पास कार है, मोटर है, फ्रिज है, टीवी है, एसी कमरा है, सब कुछ है, आज नींद नहीं आ रही है, आज कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर की बीमारी है, सब धन संपत्ति होते हुए भी उसका सुख अनुभव नहीं कर सकता है। कारण अंदर पाप है। आप जानते हो भारत के अंदर सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, पार्वती ने शंकर को, शंकर भगवान से कहा ये देखो गरीब है, इसको कुछ दे दो। तो शंकर भगवान ने कहा इनके तकदीर में नहीं है। तो पार्वती ने कहा कैसा पता चला आपको इनके तकदीर में नहीं, देखे तो देखो। कहा देख लो, एक बुजुर्ग जा रहा था गरीब, उसके सामने एक सोने का ईंट फेंक दिया, तो देखा पत्थर समझ करके बाजू में करके आगे चला गया। पाप आत्मा, भगवान देता है धन संपत्ति सब कुछ देगा, लेकिन उसका सुख पाप आत्मा भोग नहीं सकती है, उसको वो सोना भी पत्थर दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे मैं कभी भी कुछ नहीं देता हूं, किसी की इच्छा भी नहीं करना, इस कलयुग में अंतिम समय पर किसी की इच्छा नहीं करना, मेरा महल हो, मेरा ये हो, बच्चे सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो आपको सुख नहीं देगा और ही दुख देगा, समस्या का कारण बन जाएगा। जो आप अभी कुछ भी नहीं होते हुए आराम से नींद कर सकते हो, सुखी रोटी खा करके भी, तब बाबा ने कहा मुझे गरीब बच्चे ही पसंद है, मैं गरीब निवास हूं। साधारण बच्चे ही भगवान के नजदीक आते हैं। जिसके पास धन दौलत है वो भगवान के नजदीक नहीं आते हैं, नहीं चाहिए, उनके पास कुछ है। लेकिन कब आते हैं? जब ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे विघ्न आते हैं, ऐसी समस्या आती है, तब बाबा ने कहा इस समय को, संगम युग का समय को पहचान लो। इस समय, जैसे उदाहरण बरसात का समय है, भाई जी के पास खेती है, बरसात का समय आया, खेती में अगर बीज बोया, एक साल के लिए जितना आपको अनाज चाहिए अनाज मिलेगा। ये धरती आज भी देती है, एक का 50-100 गुना देती है। अगर उस समय बरसात का समय आया, अगर आप कहेंगे मैं बीमार था, घर में शादी थी, और कुछ था, खेती में बीज नहीं बोया, तो सारा साल क्या खाएंगे? भगवान देगा? कोई देगा? मांगना पड़ेगा। ये अलग अलग मंदिर में, गुरुद्वारे में, इधर उधर हमको भटकना क्यों पड़ रहा है? हमने समय पर कमाई नहीं किया है। तब बाबा आके कहता है बच्चे अब समय आया है, सारे कल्प के लिए आपको जो चाहिए, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, जो चाहते हो, तन निरोगी काया, निर्मल मन, धन संपत्तियों से भरपूर, जो चाहते हो, तो ये भाग्य विधाता है। वो आके संगम पर विधि बताता है, बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसी ऐसी प्राप्ति होंगी। तो समय का पूरा ज्ञान चाहिए। अगर समय छोड़कर आप कहेंगे कल हम रिटायर्ड हो जाएंगे, कल बच्चों को शादी भी करके हम फ्री हो जाएंगे, तब हम रोज ज्ञान सुनेंगे, तब योग लगाएंगे, हाँ बरसात का समय चला गया, फिर कब हम खेती में बीज बोएंगे, होगा? आप कहेंगे पानी कुएं से निकाल, उसके लिए भी करंट चाहिए। आप कहेंगे कुएं में पानी होगा तो भी करंट चाहिए, वो पानी अपने आप ऊपर नहीं आएगा, ये नेचुरल पानी है। तो समय को जानना जरूरी है। तो बाबा ने ये समय का खजाना अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया, 24 घंटे आपके पास है, आप पूछ लो, साक्षी होके पूछ लो। कभी कभी कोई कहते हम रोज ज्ञान सुनते हैं, एक दिन भी हम ज्ञान मिस नहीं करते हैं, तो भी ये बीमारी क्यों, ये विघ्न क्यों? तो पूछना चाहिए। बाबा ने कहा तीनों, हेल्थ, ये तन किसकी सेवा में लग रहा है? 24 घंटे आपके पास है, ये तन किसकी सेवा में लग रहा है? जिसकी सेवा कर रहे हो वो देगा ना। तब बाबा ने कहा ये तन एक सेकंड अगर भगवान की सेवा में लगाते हो, एक का पदम गुना देता है, एक जन्म के लिए निरोगी काया वरदान मिलेगा। भगवान कुछ नहीं देता है, विधि बताता है। बच्चे ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो आप? फिर कहते हैं बाबा मेरी बीमारी ठीक करो। बच्चे आप गलत कर्म करो और मैं ठीक करूं, ऐसे ही करते रहूं चलेगा? नहीं। तब बाबा विधि बताता है, तो बच्चे ऐसे करो, ये तन एक सेकंड भगवान के कार्य में लगाओ, एक का पदम गुना मिलेगा, निरोगी काया वरदान मिलेगा। मन किधर लगा रहे हो आप? व्यर्थ संकल्प इधर उधर का है ना, ये संकल्प भी खजाना है। ये क्यों व्यर्थ जा रहा है? अभी देखो माता जी खाना बनाती है, बताते बनाते मन में क्या क्या विचार आते हैं, बच्चा स्कूल में गया आया नहीं है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। ये व्यर्थ विचार क्यों आते हैं? कारण कि हम टीवी में बहुत गलत बातें सुनते हैं। एक दूसरों से मिलो, आप क्या सुनाते हैं, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसे हुआ, पर चिंतन जो दूसरों का दुख दर्द वही सुनते हैं, वही अंदर भर रहे हैं। तो जब भी आप आराम से खाली बैठो, योग में बैठो, व्यर्थ विकल्प विचारे कहां से आए? आसमान से तो नहीं आए, पर अंधाम से आते समय लेके नहीं आए वो, यहां ही हमने टीवी के द्वारा, औरों के द्वारा, तब कहा संगति संग दोषः, औरों के संग करते हैं हम, किसका संग करना चाहिए, कौन आपको अच्छी बातें देता है उनका संग करो। जो दुनिया के इधर उधर के आप देखो, आज व्हाट्सएप में देख लो कहां कहां का समाचार, हम क्या कर सकते हैं? कोई बीमार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम क्या कर सकते हैं? तो ये सब दुनिया की जो गंदगी है, घर बैठे अपने अंदर हम भर रहे हैं। तो क्या हो गया, मन किचड़े का डब्बा हो गया। तो शांत होके बैठो तो मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे। पूछते हैं मन के अंदर व्यर्थ विचार कहां से आए, हमने भरे हैं। विकल्प नेगेटिव बहुत गलत विचार कहां से आए, हमने देखा हमने सुना। वही वर्णन करते हैं, वही मन में जब भी योग में बैठो, रात को सोते हो उसी प्रकार के स्वप्न, एक अंदर का है एक बाहर का है। चारों तरफ देख लो आप, लोगों की चाल बोल कर्म कपड़े पहनना व्यवहार कैसे देख लो, उन सब का असर। तब बाबा ने कहा बच्चे, गुप्त बच्चे, गुप्त पुरुषार्थ करो। अपना समय 24 घंटे आपके पास है, पूछ लो मेरा 24 घंटा कहां जा रहा है, किसकी सेवा में जा रहा है। ये प्रारब्ध बना रहा है कि हम प्रारब्ध गंवा रहे हैं, ये स्वयं का निरीक्षण चाहिए, स्वयं को देखना है। हां वो भाई कुछ करता है, ये माताजी कुछ करते हैं, हरेक का जीवन का लक्ष्य अपना अपना है। तब बाबा ने व्यवस्था दिया है, बच्चे किसको फॉलो करो, एक बाप को, दूसरा मात पिता दिया है, जो सैंपल है संपूर्ण बने हुए हैं उनका सैंपल दिया है, बच्चे इनको फॉलो करो, भाई बहनों को औरों को फॉलो नहीं करो। ये ऐसा करता है, हां उनका जीवन का लक्ष्य है। स्कूल में चारों बच्चे जाते हैं, एक बच्चा खेलता है, एक बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देता है, एक बच्चा ऐसे घूमता रहता है, एक बच्चा लाइब्रेरी में जाके बैठता है, उनका लक्ष्य है। तो ऐसे बच्चों का संग करो जो आपको रोज अच्छी बातें सुनाता है, जो जीवन का उत्थान हो पतन नहीं हो। तो ये निर्णय कौन करेगा, जैसे हमारा लक्ष्य वैसे हमारा लक्षण। अगर हमारा लक्ष्य पहले से योग्य है कि मुझे ऐसा नंबर वन बनना है, तो चलते समय बोलते समय मिलते समय ऐसे लोगों से ही संबंध संपर्क में आता है, जो इधर उधर की बातें कुछ सुनाता है उससे दूर रहता है। ये स्वयं का नियंत्रण है। तब का स्वयं समय को जान लो, समय का वैल्यू। ये समय चला गया, फिर 5000 साल के बाद फिर ऐसा समय आएगा। अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ते समय परीक्षा के समय टीवी देखता है, इधर उधर जाता है, परीक्षा में फेल हो गया, तो रो के कोई फायदा है? फिर कब मिलेगा, एक साल के बाद दोबारा परीक्षा होगी, तब एक साल तक बैठना पड़ेगा। ये भी पढ़ाई है, इस पढ़ाई में भी कल्प में एक दफा संगम पर बाबा कहते हैं बच्चे आप सब कुछ करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे घूमेंगे सब कुछ होगा, लेकिन थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए इन सब का फुल स्टॉप लगा, थोड़ा त्याग करो और अपना समय तपस्या में लगाओ, भगवान से सब शक्ति प्राप्त करो। वो भी उसमें भी कहा व्यवस्था, 24 घंटे है, आधा घंटा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा एक घंटा, बाकी 23 घंटा आप जो चाहे कर लो। ये मंजूर है? पूछ लो आप, सुनते बहुत कुछ है, आप अपने आप से पूछो मेरे जीवन में ये क्यों ये क्या, ये सारे प्रश्नों का जवाब 24 घंटे में, मैंने सारा दिन में क्या किया, पूछ लो आप। अगर कुछ कमाई करना चाहते हो, मेरे जो ये दुख क्यों ये बीमारी क्यों, कमाई नहीं है, तब मांगना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं हरेक बच्चों को मैं राजा बनाने आया हूं और विधि बताता हूं, मैं कुछ नहीं देता हूं विधि बताता हूं। ये एक समय का वैल्यू। दूसरा है समय के बाद क्या चाहिए? वाणी। आप देख लो, बोलना चाहिए इसलिए मौन रखे आपने। कभी कभी कहते हमने मौन रखा है, मुख का मौन, मन मन का मौन है। हाँ, मन तो चल रहा है ना, तो मन के अंदर क्या क्या प्लान चलते हैं? नहीं, मुख का नहीं, ये स्थूल हो गया, सूक्ष्म है। तो कहा मन का मौन चाहिए, फिर भी मुख से बोलते हो बोलो औरों से, लेकिन ज्ञान के अलावा पर चिंतन, ये ऐसा है वो ऐसा है। हाँ वो है, आप क्या कर सकते हो? ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हाँ हुआ जरूर, आप क्या कर सकते हो? तो इसी में आप देख लो, सारा दिन एक दूसरे से मिलते हो, क्या बोलते हो? कभी कभी साक्षी होकर अपने आप को देखना कि मैंने सारा दिन बात तो किया, क्या किया? किसी का चिंतन किया, किसी का वर्णन किया, किसी की निंदा किया, किसी की ग्लानी किया, किसी को कुछ भी नहीं होगा, अपना ही मन खराब होगा। तब कहा मन सारी बीमारी दुखों का कारण है। ये मुख दिया है, कम से कम शुभ तथा मुख कमल कहते हैं। और बाबा सवेरे सवेरे मुरली का ज्ञान देता है, हमने अपने जीवन में किया। एक रोज मुरली सुनता हूं, सारी मुरली के अंदर एक मुरली का पॉइंट नोट करता हूं जो मुझे अच्छा लगा। बाबा तो बहुत सुनाता है लेकिन वो सब याद नहीं रख सकते। मेरी इच्छा के अनुसार मुझे जो सबसे सहज लगा एक मुरली के पॉइंट नोट करता हूं, लिखता हूं। अपने आप को कम से कम तीन दफा पढ़ाता हूं, सवेरे, दिन में, शाम को, क्योंकि शरीर को तीन दफा खाना खिलाते हैं। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी कहते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम तीन दफा कम से कम खाना खिलाते हैं, आत्मा को भी तीन दफा चाहिए, तब इक्वल होगा। एक मुरली के पॉइंट सवेरे शाम को, दिन में शाम को, तीन दफा अपने आप को पढ़ाओ। फिर सारे दिन में कोई मिला, ज्ञान धन है ये, जमा करके रखना नहीं, दान करो। कभी कोई मिला, बाबा के बच्चे बहुत प्यार से, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी, अगर वो इधर उधर की समाचार सुनाएंगे आपको तो भी आपके मुख से बार बार बोलते बोलते बीच बीच में आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये कहा था, तो बार बार अगर हमारे मुख से ज्ञान रतन निकलते हैं, इसको बाबा ने कहा। संगम पर ये चांस है, इस मुख को कमल मुख, कमल नेत्र, कमल हस्त बोलते हैं हम, वर्णन करते देवताओं का, वो आज बाबा देवता बना रहा है। हमारे मुख से किसी की निंदा, पता है आपको इन्होंने बहुत दुख दिया, इन्होंने बहुत गलत काम किया, पता है, तो भी अपने मुख से औरों को वर्णन नहीं करना चाहिए। संभव है ये? सोच लो, आपने देखा, आपने सुना, आपको किसी ने बताया भी, तो भी भूल से भी अपने मुख से औरों को वर्णन नहीं करना है, तो ये बीमारी फैलाना है। तब बाबा कहता है, भगवान के बच्चों, भगवान के बच्चों, भगवान के निंदक ठहर नहीं पाए। ये भगवान के बच्चों की निंदा किया हमने, है ना? बाबा जानता है, उसको अपना, हरेक का अपना अपना पार्ट है, अपना पार्ट हरेक बजा रहा है। मुझे किसने ड्यूटी दिया कि उनकी गलती, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, औरों को बताने के लिए? बता के फायदा क्या? तो इस मुख से एक व्रत रखो, कभी किसी की गलत बात सुनी है, देखी है, पता भी है, कभी भी वर्णन नहीं करना है। तब कहेंगे कि हमने क्या किया, ये शक्ति जमा किया, व्यर्थ नहीं गवाया है, नहीं तो व्यर्थ जाता है। वाणी हमारे क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ अर्थ ही नहीं है। तीसरा एक है कर्म, कर्म का श्रेष्ठ कर्म करो। तो दुनिया में चार प्रकार के कर्म है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पांच प्रकार के कर्म है। एक है कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म, दुनिया में कहते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक कर्म है, क्या है वो? श्रेष्ठ कर्म। शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार आज बाबा ने कहा आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई मुरली में, बच्चे हर कर्म करते समय ये स्मृति में रखो। क्या स्मृति में रखो? हर कर्म करते समय एक स्मृति में रखो, बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे साथ है, बाबा का वरदान मेरे साथ है। हर कर्म करते समय तो कर्म सफल अवश्य होगा। स्मृति, ये स्मृति चाहिए कि हम भगवान के श्रीमत के अनुसार हर कर्म करते हैं तो हमारा हर कर्म निश्चित सफल है। और बाबा ने कहा अगर कुछ हुआ भी तो मैं जिम्मेवार हूं, अगर मेरी स्मृति के विरुद्ध अगर आपने कुछ किया उस कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। कर्म का फल है। तब कहा कि एक है कर्म एक है विकर्म, कि अपने को शरीर समझकर अगर कर्म करते हो। कल बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर वरदान दिया था, ये बच्चे पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, तपस्या करते हो, लेकिन बाप की और परिवार की भी दुआएं चाहिए। आपने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत पुरुषार्थ किया है, लेकिन बाप की और परिवार की दुआएं चाहिए, ये भी दोनों चाहिए, सिर्फ पुरुषार्थ है कि नहीं है। तो इसके लिए यहां कर्म करते से हम बहुत कर्म करते हैं, अहम आता है, ये मैंने किया, मैंने सेंटर खोला, मैंने इतना दान दिया, जहां मैं आया वहां एक का एक गुना, मैं नहीं करण करावान हार, बाबा की है, शिव बाबा की अमानत है, उसकी सेवा में लगाया, बाबा ने कराया। अगर ये स्मृति है करण करावन हार करा रहा है, ये स्मृति में रखते हुए अगर कर्म करते हो उसको कहा ये भाग्य बनाता है। ये छोड़ के मैं शरीर, मैं बड़ा हूं, मैं पुराना हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं और कुछ हूं, तो ये मैं माना पांच विकार आ गए हैं। हर कर्म विकर्म हो जाता है। देह के स्मृति में रहकर जो भी कर्म किया उसका नाम है विकर्म। और एक है, बहुत लोग भारत में भी दान करते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, किसी को खाना देते हैं, किसी को कपड़े देते हैं, दान करते हैं। हां वो भी किसको दे रहे हैं? शरीर को देते हैं। एक का एक जन्म के लिए मिलेगा। हम जो भी दान देते हैं किसको देते हैं? आत्मा को तो नहीं, शरीर के लिए। किसी को आज के दुनिया में कहते हैं जयपुर फूट, जिसको पाव नहीं है पाव बना के देते हैं आर्टिफिशियल, किसी को कपड़े देते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, दान करते हैं, लेकिन वो शरीर के लिए करते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव बाबा ने कहा अगर आत्मा को आत्मा समझकर किसी आत्मा के लिए कुछ करते हो तो एक का पदम गुना मिलेगा। 21 जन्मों की गारंटी दिया है। तो देते समय किसको सुना रहे हो आप? आत्मा को। आत्मा की सेवा करो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये पांच प्रकार के कर्म हैं। श्रेष्ठ कर्म की खजाने जमा करो। फिर उसके बाद धन आया। धन भी स्थूल है, खजाना है। धन हम लेके नहीं आए तो न लेके जाएंगे। तो धन कहां लगाते हो आप पूछ लो? न लेके आते। अगर कुछ चाहे भगवान मुझे मदद करो, भगवान से मदद चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा में अगर धन लगाते हो तो एक का पदम गुना। से क्यों हमने लाया नहीं था, न हम लेके जाते हैं, धन हमारा नहीं कह सकते हम। तो भगवान ने दिया तो कहते हैं भगवान ने मुझे दिया, लेकिन कभी कभी कहेंगे मेरा धन है। लड़ाई झगड़ा दो भाइयों में प्रॉपर्टी के प्रति, धन के प्रति, कितनी लड़ाई झगड़ा करता है, कहां ले जाएंगे? लड़ाई झगड़ा करके ले लिया, क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ के ही जाना है। तब बाबा ने कहा कि धन किसकी सेवा में लगा रहे हो? श्रेष्ठ कर्म करके धन शिव बाबा के यज्ञ के सेवा में लगाओ। ये अविनाशी बैंक है और गारंटी देता है बाबा, एक का पदम गुना रिटर्न मिलेगा। ये चार प्रकार के स्थूल खजानों को जमा करने की विधि चाहिए। और सूक्ष्म खजाने भी है। संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ संकल्प शक्ति है। आप देख लो एक ही दिन करके देखना संकल्प शक्ति का चमत्कार। एक ही दिन कोई पूछते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग क्या है, योग क्या है, कुछ भी नहीं, बाबा ने नाम दिया है सहज राजयोग। एक दिन आप करके देखना सवेरे से रात तक, एक ही दिन के अंदर रिजल्ट दिखाई देगा। कल आज रात को आप सोएंगे देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। कल सवेरे उठते ही एक काम करो, किसी को भी देखते ही एक संकल्प करना, शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, शुभ बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि दे दो, शुभ बाबा इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ। ये संकल्प शक्ति है, संकल्प है, औरों के प्रति श्रेष्ठ संकल्प करो, चाहे कोई भी हो। इसको गीता में भी शास्त्रों में भी कहा अधम ते अधम महापापी है, वो खराब है तो उसको और एक पत्थर मारना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनका भी कल्याण करना चाहिए। करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तब बाबा ने कहा यूज मी, मैं आया हूं खाली हाथ लेके नहीं आया हूं, सर्वशक्तियां लेके आया हूं, लेकिन मैं अपने आप दे नहीं सकता हूं किसी को, अगर मैं किसी को दे दूं मैं भी कर्म बंधन में आएगा। बच्चे आप मेरे से लेके दान करो। तो कोई भी रास्ते पर चलते हो एक ही दिन करके देखना, किसी को भी देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो। हर संकल्प रूपी एक खजाना है, सवेरे से रात तक, कल रात को आप सोएंगे तो देखना एक भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। कोई चमत्कार नहीं है ये, हमारा मन दो काम करता है, किसी को देखते ही गलत भी विचार कर सकते हैं हम, अच्छा भी विचार कर सकते हैं। तो एक दिन आदत डालो, आज मुझे एक दिन चाहे कितना भी खराब व्यक्ति भी मेरे सामने आया, मुझे उनके प्रति नहीं सोचना है, उनको कुछ देना है, लेकिन देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब बाबा ने कहा मेरे से मुझे साथ रखो, बार बार बाबा को याद करते रहो, शुभ बाबा इस आत्मा का कल्याण करो, एक दिन करके रखो। इसको कहते हैं मनसा सेवा, शुभ भावना, चाहे कोई भी हो ये एक दिन अभ्यास करके देखना, तब आत्मविश्वास होगा कि हाँ ये कदे से भक्ति मार्ग में। साधु सन्यासी देखो हाथ में माला लेके जाते हैं, राम 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 करते रहते, क्यों कि मुख से गलत शब्द निकलना नहीं चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में किसी को देखते ही मेरे मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए, वो खराब है। खराब व्यक्ति होंगे, कोई पुण्य आत्मा तो दिखाई नहीं देगा, कोई अच्छा व्यक्ति इस कलयुग में मिलेगा नहीं, अधम ते अधम महापापी होंगे, कोई खराब काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब दिखाई देगा, तो भी मेरा धर्म क्या कहता है। आप उस आत्मा के प्रति मन में कुछ करने भी जाने सकते हैं, आप कुछ भी करने सकते हैं, मन संकल्प शक्ति जो कुछ कर सकती है, सबसे बड़ा उसको कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आवाज यहां से वहां पहुंचता है लेकिन संकल्प बहुत तीव्र गति से काम करती है। प्रयोग करके देखना, क्योंकि हम सुनते बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं है तो आत्मविश्वास नहीं होता है। तो अभी आपके पास समय है, आज ही देखना, आज शाम को बाबा आएगा। अगर आप अव्यक्त बाप दादा का अनुभव करना चाहते हो, कैसे बाबा आके दृष्टि देता है, अगर उस शक्ति को ग्रहण करना चाहते हो अभी से शुरू करना, अभी से यहां से डाइनिंग हॉल में जाते हो एक ही कोई भी दिखाई दे, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। अगर मन में गलत विचार चलता है बुद्धि रूपी स्क्रीन मैला हो जाती है, तो सामने बाबा आते हुए भी हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं बुद्धि स्वच्छ नहीं है। देखो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य दृष्टि माना क्या है, पाप को मिटाया, बुद्धि को स्वच्छ किया है, तो कौन करेगा, बाबा विधि बताता है। बच्चे आज सवेरे से करना चाहता, अभी आधा दिन तो चला गया, तो आज शाम तक एक ही करो, किसी को देखते ही मन में बार बार अच्छे विचार करो। क्या करो अच्छे विचार, आज बाबा ने ये कहा था, कोई सामने आया उनके प्रति शुभ सोचो, बाबा ये आपका बच्चा है, इसको पूरा वर्षा देना चाहिए। शुभ अच्छे विचार करने को कहो मन स्वच्छ। मन स्वच्छ है उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, बुद्धि स्वच्छ। जब आप बाबा आता इधर बैठते हो, देखो एकाग्र चित्त होकर बैठते हो, किधर भी इधर उधर हिलते नहीं हो, एक रस अवस्था कहा। अगर शिव बाबा का अनुभव करना चाहते हो वो एक रस अवस्था, नहीं तो बैठे कोई आया इधर देखते हो, कोई उधर देखते हो, बाबा आके चला भी गया पता ही नहीं, कहेंगे बाबा आया था हमको तो पता ही नहीं है ना। जैसे अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे तो भी कहा है अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। कितने थे उधर युद्ध के मैदान में, कोई भी देख नहीं सकता। यहां भी कितने बाबा के बच्चे हैं, बाबा को देखने के लिए मिलने के लिए आए हो, लेकिन कौन मिलेगा? शरीर, शरीर के आंखों से देखना चाहते हो, दिव्य बुद्धि नेत्र से। तो इसलिए अभी हम दो मिनट बिल्कुल शांत होके बैठो, आंखें खोल के देखो, बाबा को देखते बैठो, क्योंकि अभी से अवस्था शुरू करो, नहीं तो शाम को आके बैठते ही जगह कहां मिली इधर उधर देखते रहेंगे। तो दो तीन मिनट बिल्कुल बिल्कुल शांत होके बैठो, ऐसे शाम को भी आके ऐसे बैठना।